हरे कृष्णा। तो आज के 21 सितंबर को कलकत्ता मंदिर में हम श्रीमद् भागवत के स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक 20-21 से पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है यम दूतों को यम की शिक्षा। अनुवाद इस प्रकार से है, ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, चारों कुमार, देवहूति के पुत्र कपिल देव, स्वयंभुव मनु, प्रह्लाद महाराज, महाराज जनक, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और स्वयं मैं यानी कि यमराज धर्म के सत्सिद्धांतों को जानते हैं। मेरे दूतों, हे मेरे दूतों, दिव्य धर्म सिद्धांत जो भागवत धर्म के नाम से प्रख्यात है या परम ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करने और उनसे प्रेम करने से संबंधित है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से दूषित नहीं होता। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हे मेरे दूतों, ये जो दिव्य धर्म सिद्धांत है जिसको हम भागवत धर्म के रूप में जानते हैं, ये क्या है? आत्मसमर्पण करने वाला, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण और उनके प्रति प्रेम करने से ये भागवत धर्म संबंधित है। दो चीज़ बताइए, आत्मसमर्पण और प्रेम। और वो कहते हैं कि ये धर्म जो है भागवत धर्म, ये त्रिगुणात्मक सत्व रज तम की प्रकृति से दूषित नहीं होता। मतलब ये दिव्य है, इट इज़ ट्रांसेंडेंटल, ये अत्यंत गोपनीय है। क्या? भागवत धर्म। और साधारण मनुष्यों के लिए इसको समझना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि सौभाग्य से कोई इसे एक बार समझ लेता है यानी भागवत धर्म को, उसका तत्काल उद्धार हो जाता है और अपने घर यानी कि भागवत धाम को वापस चला जाता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। भगवद गीता में भगवान कृष्ण भागवत धर्म को सर्वाधिक गोपनीय धर्म सिद्धांत मानते हैं। सर्वम गुह्यतमम गुह्यात गुह्य इतरम, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, परम प्रिय हो, मैं तुम्हें सर्वे सबसे अधिक गोपनीय धर्म को समझा रहा हूँ। सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। कोई ये पूछ सकता है, यदि ये सिद्धांत बहुत कम लोगों को समझता है तो उसका उपयोग क्या है? अगर बहुत कम लोग समझते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? उत्तर में यमराज यहाँ कहते हैं, ये धर्म सिद्धांत समझ में आने वाला है यदि कोई ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार और अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा पद्धति का अनुसरण करे। चार गुरु शिष्य परंपराएं हैं, एक ब्रह्मा जी से, एक शिव जी से, एक लक्ष्मी जी से और एक चार कुमारों से प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी से प्रारंभ होने वाली शिष्य परंपरा को ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। शिव शंभू से प्रारंभ होने वाली परंपरा को रुद्र संप्रदाय कहते हैं। लक्ष्मी जी से प्रारंभ होने वाली परंपरा को श्री संप्रदाय कहते हैं और कुमारों से प्रारंभ होने वाले परंपरा को कुमार संप्रदाय। प्राणी को धर्म के गुह्यतम सिद्धांत को समझने के लिए इन चारों संप्रदायों में किसी एक की शरण लेना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, संप्रदाय विहीनस्य विहीनये, संप्रदाय विहीनये मंत्रास्ते निष्फला मतः। यदि कोई इन चार संप्रदायों में से किसी भी एक का अनुसरण नहीं करता है तो उसका मंत्र और दीक्षा व्यर्थ है, उसके मंत्र दीक्षा में कोई फायदा नहीं होता। आजकल अनेक अपसंप्रदाय हो गए हैं जो प्रामाणिक नहीं है, जिनका ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार संप्रदायों में से किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। लोग ऐसे अपसंप्रदायों द्वारा भ्रम में डाल दिए जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे अपसंप्रदायों में से दीक्षित होना समय को व्यर्थ विनष्ट करना है, क्योंकि ये धर्म का सिद्धांत समझने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया सभी लोग अपना मोबाइल बंद कर दें, और अपने पास समय कितना है? हाउ मच टाइम? 9:30। तो यहाँ पर प्रसंग ऐसा है श्रीमद् भागवत में कि अजामिल को लेने के लिए यमदूत गए थे, और अजामिल ने अचानक अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और उस पुत्र के नाम लेने के पहले वो बहुत डरे हुए थे, यमदूत का दर्शन कर रहे थे, और डर के मारे उन्होंने अपने जिससे ऊपर उसको सबसे अधिक आसक्ति थी ऐसे पुत्र का नाम लिया, और वो बाय द वे भगवान का नाम था। और वो होते ही उच्चारण करते ही तुरंत वहाँ से विष्णु के दूत आ गए, और विष्णु के दूतों ने बहस किया यमदूतों के साथ, और वो बहस के उपरांत यमदूत परास्त हो गए, क्षीण हो गए, निस्तेज हो गए, और वो भ्रमित होकर अपने स्वामी यमराज के पास चले गए। ये प्रश्न लेकर कि ये कैसा हो सकता है, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, आज तक हमको किसने रोका नहीं, कहीं भी हम लोग जाते हैं एकदम, जहाँ भी जाते हैं हम ही राजा होते हैं, हाँ बड़े बड़े राजा और प्रधानमंत्रियों को भी सब खींच के लेके जाते हैं, सब हमारे सामने फ्लैट हो जाते हैं। ये हमारा आज का अनुभव है, आज तक हमारा हिस्ट्री ऐसा है कि जहाँ भी हम गए हैं सब हमको देख के कांपते हैं और मलमूत्र विसर्जन करते हैं। हाँ आपको पता है हमारे हॉस्पिटल में, और जब हम पढ़ते थे तो हमने कई बार देखा है मरने के समय एकदम डर के मारे ऐसा चेहरा गंभीर होता है लोगों का, एकदम डर के मारे, और वो अचानक पेशाब और लैटरिन कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसे भयंकर जीवों को देखते हैं जिनको देखकर सबसे बड़ा ढीठ आदमी जो है वो भी पेशाब कर लेता है, इतने भयंकर होते हो। तो इसलिए हमारा हॉस्पिस है वृंदावन, जानते हैं ना, हॉस्पिस का मतलब जहाँ पर मरणासन्न लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मरने के समय किसी को यमदूत का दर्शन न हो, उन्हें भगवान के दूतों का दर्शन हो या भगवान का दर्शन हो, इसलिए उनके आसपास मरने के समय कीर्तन मंडली को बिठाते हैं। तो कीर्तन मंडली बिठाने से यमदूत हरे कृष्णा आने सकते हैं। तो ये प्रश्न लेकर वो गए हैं यमदूत कि आज तक तो हर जगह पर हमको एंट्री थी, कोई रोक नहीं था, कोई चेक पोस्ट नहीं था, लेकिन आज पहली बार देखा है कि कोई आया, कोई लोग आए, हमको रोक दिया उन्होंने, और रोक दिया इतना ही नहीं कि उनको देखकर हम लोग समझ गए कि ये हमसे ज़्यादा पावरफुल है, परास्त हो गए हम लोग, जो हमको किसी के सामने खड़े रहते हैं हम जो, तो हम सोचते हैं कि चलो इनको तो मैं मार सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा आदमी आता है तो देख के समझते हैं कि इसको नहीं मार सकता मैं, है ना, ऐसे अंदर से अनुभूति होती है कि इसको नहीं मार सकता मैं। तो वैसे उनको अनुभूति हुई कि ये चार जो लोग हैं इनको हम ना तो युद्ध में परास्त कर सकते, ना तो वाद विवाद में, इनका तेज इतना था कि हम लोग टिक ही नहीं पाए, उधर हाथ हिला के जाना पड़ा हमको, क्या चीज़ क्या बताओ महाराज जी बताओ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहले कैसे हुआ नहीं, आज कैसे हुआ। तो यमराज जी एक बड़ा सुंदर रहस्य जो है वो अपने दूतों को दे रहे, समझा रहे, जो आज तक उसने समझा नहीं था उसको। उनका काम ही ऐसा है, पुलिस लोगों को क्या काम होता है, सब गुनहगारों को दंड देना है, पकड़ना है उनको, अरेस्ट करके डालना है जेल के अंदर, पीटना है उनको, फिर केस लगाना है, फिर उनको जेल में डालना है, वहाँ से आगे दंड देकर और कहीं जेल में डालना है। तो ये काम है उनका। ऐसे लोगों को यमराज जी ऐसा बोध दे रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर भगवान का नाम का कीर्तन होता है वहाँ पर आपको एंट्री नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, विष्णु भगवान चारों हाथों में चार वस्तु लेकर अपनी गदा को घुमा घुमा कर उस व्यक्ति के चारों ओर घूमते रहते हैं। आप समझ में आपको आया, हम लोग सुबह उठकर जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निद्रा देवी बहुत परेशान करती है उस समय, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब आप कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हो, स्वयं विष्णु गदा लेकर चक्र लेकर आपके गोल गोल घूमते रहते हैं, कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग यू, आपको रक्षा करते हुए। हम लोग शायद जब करते करते सो जाएंगे अच्छी तरह से, लेकिन वो हमारे सामने घूमते रहते हैं जब तक हमारे मुंह में भगवान का नाम है। तो कहते हैं जहाँ पर भगवान का नाम का ध्वनि पहुँचता है, जहाँ पुकारते हैं और वहाँ से वहाँ तक पहुँचता है ना, अब मैं यहाँ से हरे कृष्णा बोलूँगा तो वहाँ तक तो आवाज पड़ेगा ना, जहाँ तक भी पहुँचता है वो आवाज़, तो पूरे इलाके में यमदूत को प्रवेश नहीं मिलता है। तो आपका वहाँ पर कोई काम नहीं है, इसके आगे भी ध्यान रखना, जहाँ भी भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन होता है वहाँ आपका कोई काम नहीं है, तो जाना ही नहीं वहाँ पर, चाहे उस व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा पाप का रिकॉर्ड हो, आपको वहाँ नहीं जाना है, कोई काम ही नहीं आपको, क्योंकि उस व्यक्ति का फाइल जो है वो कृष्ण भगवान ने अपने हाथ में लिया है, हमारे डिपार्टमेंट से लेकर हम अपने हाथ में लिया है, तो हमको उस फाइल में देखने का अधिकार नहीं है। और ये भी जान लो, तुम समझते होंगे कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और मैं ही परम हूँ, लेकिन नहीं, मेरे भी स्वामी हैं श्री कृष्ण भगवान, मैं उनके अंडर काम करता हूँ, उनका दास हूँ मैं। आपको लगता हूँ कि आपका स्वामी हूँ, बड़ी शक्ति है मुझ में, आप देखते हैं मेरे अधिकार से क्या क्या होता है, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मेरे स्वामी हैं, उन्हीं के आदेश से मैं ये काम करता हूँ, और मैं भी वो जो रहस्य आपको बता रहा हूँ उसका पालन मैं भी करता हूँ। क्या रहस्य बताया? भागवत धर्म समझाया उनको, दो बातें बताई ना, एक शरणागति और दूसरा प्रेम। और वो स्वयं नम्रता से बोलते हैं, सबका नाम लेते हैं, वो 12 महाजन हैं तो सब 11 का नाम लेते हैं, और लास्ट में कहते हैं और मैं भी, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं मैं और ब्रह्मा और शिव जी और नारद जी, शुरू अपने से नहीं करते हैं, शुरू ब्रह्मा जी से करते हैं और एंड में मैं भी हूँ ऐसे बताते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग खत लिखते ना कि हम 4000 वृंदावन जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, माई सेल्फ एंड सनत कुमार एंड ये 4000 वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सनत कुमार और आचार्य रत्न प्रभु और राधेश्याम प्रभु और बाल गोविंद प्रभु और मैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ये हमारा संप्रदाय का सिद्धांत है, अपने आप को सबसे लास्ट रखना। संप्रदाय की बात हो रही है ना यहाँ पर, वो भी उनको उन्होंने बहुत सारा बोध दिया, मानो श्रीमद् भागवत ही सिखा दिया, इतने डिस्कशन के अंदर सिद्धांत जो हमारा है भागवत का सार समझा दिया उनको पूरा। तो यमदूत भी भाग्यवान है, क्योंकि यमराज जैसे महाजन से वो ये परम भागवत धर्म का रहस्य सिद्धांत समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पर यमराज जी उन 12 जनों का उल्लेख करते हैं खुद को लेकर, जिनके द्वारा ये भागवत धर्म का रहस्य सबके लिए प्रकट होता है। उसमें ब्रह्मा जी है, शिव जी है, नारद जी है, भीष्मदेव है, जनक राजा हैं और सुखदेव हैं और कुमार है, लक्ष्मी जी हैं, हाँ बहुत लोगों का नाम दिया है, प्रहलाद महाराज हैं, स्वयंभुव मनु हैं, बलि महाराज हैं, इनके साथ इनके पास में वो धरोहर है। धरोहर मतलब लेगेसी, कि सिद्धांत का जो रहस्य है उनके पास में। जैसे बोलते हैं ना कि अणुबम बनाने का टेक्निक चार पांच लोगों के पास में दुनिया में, वो किसी के पास नहीं। वो बहुत रहस्यमय बात होती है, वो रहस्यमय बात जो है इन लोगों के पास है, और इन्हीं के पास आप जाएंगे तो आपको वो रहस्य समझ सकता है। और कहीं जाएंगे और वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन वैसा नहीं होगा वो। तो ये संप्रदाय जो है इसको बारह महाजन कहते हैं, और बारह महाजनों के द्वारा भगवान अपने बारे में जो भागवत सिद्धांत है उसका रहस्य प्रचार करते हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पर यमराज जी क्या कहते हैं कि इनके अलावा आप किसी भी संप्रदाय में अगर जुड़ेंगे तो आपको वो अनुभूति नहीं होगी जो इन संप्रदायों में से आपको मिल सकती है। और वो अनुभूति क्या है? श्री कृष्ण प्रेम, परम भक्ति और प्रेम। वो अगर हमको चाहिए तो आप कहीं भी जाके उसको समझ नहीं सकते। अगर आपको सोना खरीदना है तो क्या जरूरी है बताइए? यस हरे कृष्णा। अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको क्या जरूरी होता है? हाँ, सोना के बारे में जानकारी कर लो पहले, सोना क्या चीज है। हर पीली रंग की चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो सबसे पहले कितनी वस्तुएं पीली और चमकने वाली है वो समझ लो, उस पर सोना कौन सा है वो ढूंढ लो पहले, वो जान लो। और फिर जहां, दूसरी बात, जहां पर ऐसा सोना प्राप्त है उस जगह पर जाओ, जहां पर बहुत भीड़ लगी है वहां पर मत जाओ, क्योंकि सोना जो होता है शुद्ध सोना स्वर्ण बहुत महंगा होता है, इसलिए उस दुकान में बहुत कम ग्राहक होते हैं। और जो इमिटेशन ज्वेलरी होता है, नकली सोने की जो गहने बेचते हैं, वो सस्ते होते हैं और वहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है। तो आपको लगेगा इस दुकान में तो लाखों लोग खरीदते हैं, यही सोना होगा, मैं भी जाता हूँ, तो आप फंस जाएंगे। जैसा दिखता है वैसा नहीं होता हमेशा। तो पहले जानना ज़रूरी है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको भगवान के पास जाकर पैसा चाहिए, हाँ पोजिशन चाहिए, पावर चाहिए, सेक्स चाहिए, अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, चार पांच बीवियाँ होनी चाहिए, बहुत सारा धन दंपति होना चाहिए, ये सोचकर बहुत लोग दुनिया के आते हैं भगवान के पास। सब लोग उनके लिए नहीं आते, अपने लिए आते हैं। मेरे को क्या चाहिए, मेरा लिस्ट में क्या क्या लिखा है, वो लिस्ट बना के आते हैं और बोलते हैं चार केला लो, एक नारियल लो, एक हार ले लो, तो मेरी लिस्ट पूरी कर दो। तो ऐसे लोगों को वो प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले भगवान के पास जाने के पहले क्या उनसे मांगना है वो पता होना चाहिए। वो तो जगत के स्वामी हैं, उनसे आप बोलेंगे दो रोटी दे दो, एक घर दे दो, वो सब टेम्पररी वस्तु मांग रहे हैं उनसे, है ना। इनसे क्या होता है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। जो जो मांगते हैं लोग ना, आपको सोचना चाहिए कि जो जो हम भगवान से मांगते हैं, थोड़ा सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये सब यहाँ पर छोड़ के जाने वाली वस्तु है, यहाँ पर से जाने वाली वस्तु नहीं है। वो भगवान से वो मांगना चाहिए जो हमारे साथ जा सकता है। जब हम मरेंगे, शरीर को छोड़ देंगे, यहाँ पर जला जाएगा उसको, फिर भी आत्मा के साथ में जो जाएगा वो वस्तु भगवान से मांगना चाहिए, वो भगवान हमको दे सकते हैं। और देवी देवता लोग वो नहीं दे सकते हैं, वो आपको वही वस्तु देंगे जो आपको यहीं पर छोड़ के जाना है। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। वो टेम्पल कमांडर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, हाँ जीबीसी बनना है, क्या बनना है, इसमें से हमको कुछ नहीं बनना है। सेवा के लिए कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये बनने के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं आए। तो बहुत बड़ा मंदिर है मायापुर का, मेरा गोल है कि मुझे उसका प्रेसिडेंट बनना है, TOVP, ये मंदिर का हमारा प्रसिद्धि, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, विश्व भर में मेरा नाम होगा, बहुत मेरा कीर्ति होगी, ऐश वियश होगा, पैसा भी होगा, बहुत सारा होगा। ये हमारे जीवन का गोल नहीं है। हमें गोपी भरतुर पदकमलो और दास दास अनुदास ये बनना है। और वो बनने के लिए अगर प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन बनना वही है। बहुत सब इम्पोर्टेंट बात है ये समझने की। हम सोचते हैं जब मैं मंदिर में गया था तो पहले बर्तन मानता था, आज मैं उसी मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ, ये कितना प्रोग्रेस कर लिया। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं है, ये डेंजरस चीज़ है अगर हम इसको प्रोग्रेस मानते हैं। हम में कितना दासता भाव आ गया है, कितना हम लोग सेवक भाव में आ गए हैं, कितना सेवा भाव हमने पैदा किया हृदय में, ये हमारी प्रगति का लक्षण है। कितना हम लोग भक्तों के अंदर श्रद्धा रखते हैं, वैष्णवों के अंदर कितना वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, और कितना प्रेम हमारे प्रति हृदय में जीवों के प्रति और भगवान के प्रति और वैष्णवों के प्रति पैदा हो गया है, ये हमारे उन्नति का लक्षण है। इसलिए दीक्षा लेते समय या संप्रदाय में प्रवेश करते समय, भगवान के पास आते समय हमको चाहिए क्या, वो पहले पता करना जरूरी है, और फिर मांगना क्या है उसी के अनुसार मांगना है जो हमको चाहिए, और मांगना वही चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ केवल भगवान नाम, भगवान की भक्ति और प्रेम और वैष्णव सेवा, यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। 50 साल मंदिर में फुल टाइम रहेंगे तो भी एक भी चीज़ आप साथ में नहीं लेके जा सकते। हृदय में जो भगवान आत्मा के स्तर पर जो प्राप्ति किया है वो आत्मा के साथ जाएगा, और शरीर के स्तर पर मन और बुद्धि और अहंकार के स्तर पर जो प्राप्त किया है यही रह जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारा सिद्धांत जो है ये 12 महाजनों के पास है, और उन्हीं से संबंधित जो वस्तु लोग हैं, आचार्य हैं, उनके द्वारा ये प्राप्त हो सकता है, सबके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। अरे इंडिया में तो दुकान लगे हुए हैं, पूरे मॉल है, मॉल पूरा इंडिया इज अ स्पिरिचुअल मॉल, स्पिरिचुअल भी नहीं, सॉरी स्पिरिचुअल तो गलत शब्द है उनके लिए, ये तो रिलीजियस मॉल है पूरा। क्या चाहिए आपको, दाढ़ी वाला चाहिए कि बिना दाढ़ी वाला चाहिए, लंबे बाल वाला चाहिए कि हाथ दिखा के बीमार ठीक करने वाला चाहिए कि हवा से घड़ी निकालने वाला चाहिए, कौन चाहिए आपको बताओ? या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 15 दिन कुछ खाता ही नहीं है और सोता भी नहीं है, बैठा रहता है ऐसे ध्यान करते हुए, क्या चाहिए आपको? या योगी चाहिए जो अदृश्य होता है, हाँ अभी बैठा हुआ है आपके सामने, अभी तो अदृश्य हो गया फिर वापस पैदा हो गया, ऐसा पूरा मॉल है उधर। कोई अपने एक उंगली से लोहे की सली को बेंड कर रहा है, आंख में पट्टी लगाकर रोहे की सली लगाकर लोहे को बेंड कर रहा है, लगता है ना बाबा क्या पावर है उसके अंदर, वो बड़ा बाबा होगा, वो स्पिरिचुअल होगा, भगवान होगा, भगवान है ना, जो मैं नहीं कर सकता और अगर वो कर रहा है तो मतलब वो भगवान होगा, ऐसा मॉल लगा हुआ है पूरा। ये सबके अंदर ढूंढना है कि असली कौन है, इसलिए इस सबके बीच में जाने के पहले आपको जानना है कि आपको चाहिए क्या और क्या चाहना चाहिए आपको, व्हाट यू शुड वांट, आपको मांगना भी क्या है चाहना भी क्या है, आपके हित हित किस में है, ये आप जानेंगे तो ही इस मॉल में नहीं फंसेंगे आप, उसमें से भी राइट आदमी के पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। इसलिए सब लोग हृदय में झांक कर देखिए कि हमको क्या चाहिए, क्यों हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और क्या चाहिए, पहले वो सोच लो। हमको केवल चाहिए भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति और सेवा और उनके भक्तों की सेवा, जो उनको अच्छा लगे, जो उनको संतुष्ट करे, वही करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। हमको संतुष्टि मिले या ना मिले वो बाद की बात है, वो चाहे वो देंगे नहीं देंगे, लेकिन सम सिद्धिर हरि तोषणम, ये चाहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी कोई वाद विवाद होता है, कोई संघर्ष होता है, कोई झगड़ा होता है, याद रखना ये बात का कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। हमेशा मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं, कभी कभी आते किस लिए हैं, बाद में झगड़ा होता तो बाद में उस पर अड़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो बनेगा प्रेसिडेंट, नहीं नहीं मैं तो सीनियर हूँ, मैं नहीं होगा तो चलेगा लेकिन उसको नहीं बनने दूंगा। मतलब हम किस लिए आए हैं वो भूल गए हम लोग ना, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। अगर आपको पता है हम लोग किस लिए आए हैं तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम तो सेवा करने आए हैं, सेवा जब तक मिल रही तब तक वो रहेंगे। इसलिए हमको क्या चाहिए पहले पता करना चाहिए, और फिर हम लोग ये जानकारी कर लेंगे कि जो हमको चाहिए वो कहाँ मिलेगा, उसका एड्रेस ढूंढ के लेंगे पहले। फिर ये सारे मॉल के चक्र के अंदर लाइट लग रही है, म्यूजिक बज रही है, इधर आओ उधर आओ, ये आप महाराज के पास आओ, इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ पर ये मिलता है, वहाँ पर वो मिलता है, ये बाबा ऐसे 1008 महामंडलेश्वर इनके पास में ये सिद्धि है, ये जल के नीचे रहते हैं, ये सब चकाचौंध जो माहौल है इसमें से गुजर कर आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ आपको जाना है, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो इच्छा है वो कहाँ पूरी होने वाली। तो ये ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी इनके पास ही है। और इनके अलावा कहीं भी और फंस जाएंगे, संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फलामतः, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, जपते रहो। हाँ, चाहे 50 खत लिखो और रास्ते में जो अच्छा लगा डिब्बा उसमें डाल दो, पूछेगा क्या वो, नहीं वो इतना अच्छा था, डेकोरेशन किया था, उसके ऊपर पेंटिंग था, अच्छे अच्छे वाक्य लिखे थे, स्वच्छ भी था बहुत, बहुत खत भी पड़े हुए थे, तो मैंने डाल दिया उसके अंदर, फिर पहुँचेगा क्या वो। जब तक वो डाक द्वारा प्रमाणित नहीं होगा तब तक आपका खत नहीं पहुँचेगा, और डाक द्वारा प्रमाणित जो होता है ना बॉक्स, वो हमेशा गंदा होता है, याद रखना साफ नहीं होता है, फिर भी प्रमाणित होने की वजह से वहाँ पर खत डालेंगे तो ही पहुँचेगा। आप बोलेंगे पर लंबा खत लिखा था मैंने 12 पन्ने का, और वो अलग अलग शाही से लिखा था, एक पैराग्राफ लाल से, एक पैराग्राफ ब्लू से, एक पैराग्राफ ग्रीन से लिखा था, अच्छी पोएट्री भी लिखी थी, इतना अच्छा हस्ताक्षर था, एड्रेस बराबर लिखा था, लेकिन पहुँचेगा क्या वो, नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वहीं जाना है आपको, वहीं डालना है जहाँ से वो प्रमाणित होकर पहुँचेगा जिसको दो लिखना है। तो ये संप्रदाय जो है इसमें आप अटैच हो जाएंगे तो आपका जो भक्ति है वो वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ उसको पहुँचना है। वो कहाँ पहुँचना है, भगवान के चरणों में पहुँचना है, वो तब पहुँचेगा जब आप सही जगह पे उसको डालोगे। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं हमारे, ब्रह्मादेव भगवान हमारे संप्रदाय के प्रमुख हैं, वो हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, यस, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं, भगवान के द्वारा निर्मित, उनके द्वारा ये संप्रदाय निर्माण हुआ है, और हम सब लोग इसमें अटैच हैं, है ना। तुमको पता होना चाहिए इसका महात्म्य क्या है। इसका महात्म्य यह है कि हमारे ब्रह्मा जी सबसे प्रथम जीव हैं और इतने आदर्श हैं कि ये स्वयं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए पत्थर बने हुए हैं। कहाँ पर, बरसाना में, सबसे बड़ा आदमी है वो, सबसे पहला, हम सब लोग उनके बेटे हैं। कोई भी जीव को उठा के देख लो, वो उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं का बालक है, उन्हीं का संतान है, ऐसे जीव है वो, साधारण जीव नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे अगर कोई इंडिया में आप किसी को मिलेगे बुढ़े आदमी को 85 ईयर ओल्ड, तो बोलेगा ये मेरे 5 बच्चे हैं और मेरे 50 ग्रैंड सन्स हैं, बड़े गर्व के साथ बोलेगा ये मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 5 बहुएँ हैं, मेरे भाई है, उनकी पत्नियां हैं, ये सारे उनके बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे द्वारा निर्माण हो गया है, और वो गर्व कितना करता है उसके ऊपर। ब्रह्मा जी को कितना गर्व करना चाहिए, हाँ, 84 लाख योनि उनकी द्वारा निर्माण हो गई है, और हर एक योनि में अनंत करोड़ अनंत जो खरबों जीव हैं उसके अंदर, और वो गर्व के साथ कैसे दाढ़ी पे हाथ घुमा कह सकते हैं ये सब मेरे बालक हैं। लेकिन बाय द वे ब्रह्मा जी को देखते हैं ना हम दाढ़ी वाले, वो दाढ़ी वाले गलत पिक्चर है। ब्रह्मा जी अपने अंत तक एकदम नव यौवन सुंदर युवक रहते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर बुढ़ापा और बीमारी है ही नहीं, केवल जन्म है और मृत्यु है, उनको भी मृत्यु है, ध्यान रखना इस बात का बाय द वे। तो जन्म और केवल मृत्यु होने के नाते उनको ना केवल बूढ़े ना होते, होते नहीं हो कभी वो, और बीमार भी नहीं होते, तो खाली वो हमारे लोग उसको दाढ़ी लगा देते हैं, लेकिन दाढ़ी उसके अंदर होता नहीं है। इस्कॉन के अंदर जो चित्रपट है ना उसके अंदर दाढ़ी नहीं है भगवान को, देखो आप ब्रह्मा जी को ऐसा यंग दिखते हैं बहुत, 4 मुकुट वाले, 4 सर वाले। तो ये ब्रह्मा जी इतने ऊंचे पद पर है, तो हमारे दुनिया में कैसे होता है, अगर आप सबसे ऊपर पोस्ट पहुंच गए तो भी उसके ऊपर क्या है ढूंढते रहते हम लोग, हमको वहां पर पहुंचना है उसके ऊपर जाके। ब्रह्मा जी के ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है, सीधे भगवान है उसके बाद में, लेकिन वो भगवान के प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी, इतना बड़ा अधिकार है उनके पास, सारा सृष्टि निर्माण किया है, प्रकृति का निर्माण किया है, सारी शक्तियों को इन्वेस्ट किया है, 24 तत्व लिए हैं और बड़ा इंजीनियरिंग करके हर एक का शरीर बनाया है, किसी का शरीर एक जैसा है क्या, यहाँ पर जुड़वा भाई का भी शरीर एक साथ होता नहीं है, दे आर डिफरेंट। इतना बड़ा कुशलता से वो बनाते हैं सबको, इतनी शक्ति है उनके पास, सारे देवता सलाम करते हैं उनको, और वो ब्रह्मा जी सत्ययुग के शुरुआत में 60,000 साल तप किया उन्होंने। अब इतना बड़ा आदमी तपस्या को बैठा तो भगवान को थोड़ा आना चाहिए, कोई ऐसा ऐरागर आदमी नहीं बैठा है, मेरा प्रथम पुत्र यही यूनिवर्स का इंचार्ज है, वो मैंने बनाया उसको इंचार्ज, वो तपस्या को बैठा है, फिर भी दर्शन नहीं दिया उनको, फिर तपस्या बंद किया और काम पे लगे अपने, पूरा सत्ययुग का सेवा किया उन्होंने, और सत्ययुग के एंड में 60,000 साल फिर तपस्या किया केवल हवा को लेते हुए, पेड़ से गिरकर पत्ता खाते हुए, ऐसा भयंकर तपस्या किया। अरे क्यों किया तपस्या, वो पूछो क्या मतलब था उनका तपस्या करने का। एक ही उद्देश्य से, क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने उनको भगवान ने हृदय में ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दे दिया उनको, 4 श्लोक के अंदर पूरा ज्ञान दे दिया उनको, तो वो समझ गए थे कि इसी ब्रह्मांड में, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी ब्रह्मांड में द्वापर के अंत में आने वाले हैं मेरे भगवान लीला करने के लिए, और ग्वाल बाल भी आएंगे, गोपियाँ भी आएंगी गोलोक वृंदावन से, वो जानते थे। तो उनको उनके चरण की भक्ति चाहिए थी, उनके चरण की धूल चाहिए थी, इसलिए उन्होंने 120,000 साल तपस्या किया, और एंड में भगवान ने दर्शन दिया उनको, बोले क्या चाहते हो। उन्होंने कहा मम उपरत्वाम क्रीड़ा करिष्यसि, आप मेरे सर पर क्रीड़ा करो ताकि आपके और ग्वाल बालों के और गोपियों के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। तो बोले जाओ पत्थर बनो, पहाड़ बनो, ऐसा नहीं बोला कि जाकर एक महल बनाओ वहां पर रहो, मैं आ रहा हूं तो खिड़की से देखना मैं क्या करने वाला हूं। हाँ देखो है ना, अभी बड़ा आदमी कोई है उसको कहीं कुछ देखना है तो पहला सीट रिजर्व करेगा अपने, जाके रास्ते से जाएगा प्राइवेट रोड से और बैठेगा एकदम प्राइम लोकेशन पे। वो कैसा होता है रथ यात्रा में, कैसे होता है रथ यात्रा में, यू हैव टू बुक अ सीट विच इज़ वेरी क्लोज टू द रथ ऑन द रूफ ऑफ समबडीज हाउस, लेकिन साल भर में कोई वैल्यू नहीं उसको, उस दिन में उस सीट की कीमत 1,000 रुपये होती है, 2 घंटा के लिए बैठना है उधर आपको, क्योंकि वहाँ से रथ गुजरने वाला है। तो बड़ा आदमी क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट सीट को बुक कर लेता है और सबसे पहले जाकर वहाँ बैठता है, वहाँ पर खाने पीने की ड्रिंक्स की व्यवस्था करता है और रथ यात्रा को देखता है। ब्रह्मा जी को ऐसा नहीं बताया, ब्रह्मा जी को बोला जो चाहिए है वो पूछ रहे हैं ना आप, उसके लिए आपको पत्थर बनना पड़ेगा, जाओ। कोई उन्हें आर्गुमेंट नहीं किया, अरे भाई पत्थर क्यों बना रहे, मुझे एक महल दे दो वहाँ पर बनूंगा बैठूंगा देखूंगा आपके, बीच में आके चरण की रथ ले लूँगा दंडवत करके। नहीं, जैसे भगवान ने बोला तुरंत गए, बोले कहाँ जाऊँ ब्रज में, ब्रज तो बहुत बड़ा है, बोले बरसाने जाओ वृषभानुपुर जाओ, वहाँ पर पत्थर बनाओ पहाड़ बनाओ, वहाँ पर मैं राधा रानी सखियाँ ग्वाल बाल सब लोग आके लीला करेंगे और आपको सहजता से रज प्राप्त हो जाएगी चरणों की उनकी। अभी ब्रह्मा जी किसके अंदर एक रहस्य की बात भी ऐसी है, अगर ब्रह्मा जी खुद जाते बोलते हैं गोपियों ये मेरे सर पे पाँव रखो धूल चाहिए आपकी, तो देंगे गोपियाँ क्या, बोले गोपियाँ तो ब्रह्मदेव हैं सृष्टि के रचयिता हैं हमारे लिए वंदनीय हैं, कैसे हम अपने पैर उनके सर पे रखेंगे। तो उनको भी संकोच नहीं करना है, जिनकी रथ चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रभु जी आपके रथ चाहिए पकड़ के हाथ पाँव बांध के उनका पैर उठा करके घिस रहे सर पे, ऐसा रज नहीं मिलता है ना, पहले इस्कॉन में हुआ करता था ऐसे और भक्तों को उठा के दो हाथ पकड़ के पूरा ऐसा मोड़ के उसके चरण को सब सर पे लगा देते, ऐसी कृपा नहीं मिलती कभी, हृदय से होनी चाहिए। तो जिनकी रज चाहिए उनको एम्बरेसमेंट तकलीफ कैसे दे सकते आप, यू कैन नॉट ट्रबल देम, तो उनको भी सहजता से मिलना चाहिए, इसलिए वो पत्थर बने, क्योंकि पत्थर पर चलने को कोई किसको संकोच नहीं होता है, घास पर चलने को किसी को संकोच नहीं होता है, इसलिए उद्धव जी घास बने और ब्रह्मा जी पत्थर बने। आज तक इसने आपने देखा है कि सबसे ऊंचे पद पर जो बैठा है वो तपस्या कर रहा है सबसे नीचा बनने के लिए, सोचा आपने कभी, एग्जाम दे रहा है, हाँ कोई बड़ी एग्जाम दे रहा है ताकि उसको चपरासी बनना है, ऐसा क्या होता है क्या, वो बड़ा कंपनी का मालिक है लेकिन अभी वो एग्जाम दे रहा है ताकि कंपनी का चपरासी बनना है उसको, ऐसा होता है कभी, नो यू नॉट हर्ड इट अपनी ना, कोई सुना नहीं हमने ऐसे। लोग तपस्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, कुछ परीक्षा पास करते हैं, इंटरव्यू देते हैं उससे आगे जाने के लिए, लेकिन हमारे ब्रह्मदेव कितने आदर्श हैं, 120,000 साल तपस्या कर रहे हैं, क्यों, पत्थर बनने के लिए। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हमारे संप्रदाय के प्रमुख हैं, इन्होंने ऐसा आदर्श बना के दिया है, रणादपी सुनी चेना गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास अनुदास, ये दासों के दास बन रहे हैं, पत्थर बन रहे हैं रज के नीचे जाने, गोपियों के चरणों की रज की उनको सर पे धारण करना है, जो सर के अंदर ऐसा दिमाग है जो पूरी दुनिया को निर्माण करता है, उस सर के ऊपर उनको गोपियों के चरणों के रज चाहिए। उसका मतलब क्या है, इतना बड़ा काम कर रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहे हैं, उनका जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके साथ में कभी भी उनके मन में अहम प्रवेश नहीं करता है। आमतौर पे क्या होता है, अभी आप क्लर्क थे, थोड़ा सा आपको इतना ज़्यादा अहंकार नहीं था, ऑफिसर बन गए तुरंत, एक कदर ऊपर आ गया आपकी, फिर आप बोलेंगे मैं ऑफिसर के बाद मैनेजर बन गया, और थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर डायरेक्टर बन गया, फिर प्रेसिडेंट बन गया कंपनी का, तो बढ़ते जाएगा ना आपका, जैसे पद बढ़ेगा आपका अहंकार बढ़ते जाएगा। लेकिन इतने बड़े पद पर और कोई दुनिया में नहीं है जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हैं इस दुनिया में। हाँ तो जी, आप थोड़ा सा डांस कीजिए, आप थोड़ा डांस कीजिए, डांस तो अच्छा रहेगा। तो इतने बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, फिर भी उनके दिमाग में कभी भी अहंकार प्रवेश नहीं करता है। इसीलिए वो सोच सकते हैं कि मुझे इन गोपियों के चरणों की रज चाहिए। ऐसा सोचना भी, ऐसा विचार मन में आना भी उसके लिए नम्रता हो जरूरी है। अगर नम्रता होगी तो ये सोच सकता है कि मुझे इनकी चरणों की रज चाहिए। कौन है वो? तो गंवार गांव की लड़कियां हैं, गुजर जाति की, कोई पंडित नहीं है, कोई ऋषि ऋषि भी नहीं है। वो गाय का दूध निकालती है, गोबर का इकट्ठा करती है, कंडा बनाती है, सुखाती है, इकट्ठा करती है, चूल्हे में जलाती है, रोटी बनाती है, मक्खन मंथन करती है। सिंपल लेडीज, उनके चरणों की रज चाहिए, ऐसी इच्छा उत्पन्न होना भी ब्रह्मा के लिए नम्रता के बिना नहीं हो सकता है। इसका मतलब ब्रह्मा के अंदर उतनी नम्रता है, श्रेष्ठ नम्रता, जो उनको पत्थर बनने के लिए मजबूर कर रही है। सोचो इस बात को आप। हम लोग को सॉरी सुनते हैं, ब्रह्मा जी तपस्या किया, पत्थर बन गए, भगवान लीला किया, लेकिन इसके अंदर ये बात है, इतना अगर नम्रता नहीं होता तो पत्थर नहीं बनते। अरे वो अकेले नहीं है, शिव जी पत्थर बने हुए हैं, वो भी संप्रदाय के प्रमुख हैं, है ना, शिव संप्रदाय, वो भी नंदीश्वर नंद भाव में पत्थर बने हुए हैं ताकि ग्वाल बाल नंद बाबा का चरण रज उनको मिले। अरे स्वयं विष्णु बने, विष्णु पत्थर किस रूप में? गोवर्धन और शालिग्राम दोनों रूप में। गोवर्धन जो वृंदावन में है वो विष्णु महाराज है हमारे, वो पत्थर बने हुए हैं, विष्णु तत्व है स्वयं, लेकिन फिर भी कृष्ण और गोपियों और ग्वाल बालों के चरण रज प्राप्त करने के लिए पत्थर बने हुए हैं। बताओ अभी आप, हमारा संप्रदाय कितना श्रेष्ठ है, रेवोल्यूशनरी है। आपको लगेगा ऊपर 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 जाएंगे तो ब्रह्मा बन जाएंगे एक दिन, है ना, शास्त्र में लिखा है, अगर आप कड़ी तपस्या करके ब्रह्मचर्य पालन करोगे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, केवल ब्रह्मचर्य, भक्ति भक्ति की जरूरत नहीं है, तो आप ब्रह्मा बन सकते हो, ब्रह्मा जी के लोक में प्रवेश कर सकते हो। तो लोग बोलेंगे अच्छा है यार, ब्रह्मा बनेंगे तो अच्छा कंट्रोल करेंगे पूरा, अभी तो कंपनी कंट्रोल कर रही है, देश कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी आगे तो पूरा 14 लोग कंट्रोल करेंगे। इसी के पीछे सब लोग लगे हुए हैं, और जिसको वो कंट्रोल प्राप्त है वो सोच रहा है कि मैं पत्थर बन जाऊं। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, स्पिरिचुअल कॉन्ट्राडिक्शन। और हमको समझना यही है कि हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं उनका भाव क्या है, उनका भाव यही है। इसी महानता के वजह से गौरांग महाप्रभु उनके संप्रदाय में अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु इस काम इंदिर संप्रदाय जो सबसे ऊंची चीज बांट रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम करोतुवा, तोड़ दो मेरे हृदय को आप, ना मिलो मुझे आप, कुचल दो मुझे आप, पिच पिनष्टुमाम, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे नित्य आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। दिस इज रेवोल्यूशनरी थॉट। अरे आपने सब कुछ त्याग किया, सर्वधर्म परित्याज्यम, हाँ एक शरण गए भगवान के, सब छोड़ दिया आपने, सब कर्तव्य को छोड़ दिया, अपने आप को भी उन्होंने नष्ट कर दिया, भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, एंड में क्या मिल रहा है, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम, आपको कुचला जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, इट्स टू मच। कम से कम देखो तो मेरे साथ, कम से कम मुझे देखो, हाथ दिखाओ आशीर्वाद के रूप में, तथास्तु। कुछ तो कुछ तपस्या करते थे हम लोग भक्ति करने के बाद, भगवान थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो, मोक्ष कम से कम दे दो, तकलीफ को दूर करो। इसके अलावा गोपियों को क्या किया उन्होंने, छोड़ के गले गए, रो रहे छाती पीट कर रो रो रही, लेकिन क्या बोल रही गोपियां, आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनम, मत दर्शन दो मुझे, मर्महताम, कुचल दो हृदय को मेरे, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, तुमको जीव करना है मेरे साथ में तुम करो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर बने ही रहेंगे हमेशा के लिए, आपका पदकमल और उसकी भक्ति और सेवा मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सिद्धांत जो है वो गौरांग महाप्रभु ने ब्रह्म संप्रदाय में आकर सिखाया। इसलिए भाइयों और बहनों और भक्तगणों सावधान, आप संप्रदाय किस में है इसके बारे में सोचिए। इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है, ये निरपेक्ष भक्ति संप्रदाय है। हर लोग हर व्यक्ति भगवान के पास कुछ ना कुछ लेने को आता है, लेकिन इस संप्रदाय में आप लेने को आएंगे जरूर, बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लेने के लिए नहीं आना है, यहाँ पर केवल देने के लिए आना है। जस्ट टू लर्न हाउ टू गिव इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो वी आर वेरी प्राउड कि वी आर इन दिस संप्रदाय, क्योंकि हमें इसमें इस स्थिति पर महाप्रभु चैतन्य ब्रह्मा जी लाकर छोड़ देते हैं कि आप जिसके लिए आए थे वही आप भूल जाएंगे और फिर क्या देना है उसके बारे में सोचेंगे दूसरों को और भगवान को भी। गोपियों ने श्रृंगार भी किया अपना सुंदर, इतना अपने लिए नहीं किया, वो देखेंगे तो उनको आनंद होगा इसलिए किया, इसलिए अपने आप को सुंदर बना रहे। ये भाव केवल गौड़ीय संप्रदाय में मिलेगा आपको। और एक विशेष बात है इस संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु जो इस संप्रदाय में आए उन्होंने बाकी तीन संप्रदाय में से दो दो गुण लिए और वो छह गुण जो है इसमें सम्मिलित किए। इसका मतलब गौड़ीय संप्रदाय के अंदर बाकी संप्रदायों के भी एसेंस जो है, सार, ये भी सम्मिलित है। तो वी हैव द बेस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। हम जाएंगे किसी बाबा को मिलेंगे, आप ही मिलते हैं, बोलते वो बाबा जो है ना वो हाथ देके बोलता है तुम्हारा लास्ट जन्म में तुम कौन थे। तो हमारे बाबा को तो मालूम नहीं पड़ता ऐसे सब करने से। है ना, हमारे गुरुदेव तो हाथ देख के बोलते नहीं तुम जन्म में गधा थे कि हाथी थे, लेकिन वो बोलता है ये तुम पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और तुमने गौ का अपराध किया था इसलिए तुम्हारी कन्या नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है तुमको, वो सब बताता है। तो शायद वो बाबा हमारे बाबा से श्रेष्ठ हो सकते हैं। नहीं, हमारे बाबा के पास में शुद्ध भक्ति और प्रेम का नुस्खा है, जो बाबा के पास खाली हाथ का नुस्खा है। समझो आपको पता भी चला कि आप पिछले जन्म में हाथी थे, क्या फर्क पड़ता है अभी आपको? हाउ डज इट मेक डिफरेंस टेल मी, कि पिछले जन्म में आप राजा थे और उसने आपने गऊ का अपराध किया इसलिए आज चपरासी बन गए इस जन्म में। इफ यू कम टू नो दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? हमको पता चलना चाहिए आज क्या करना है मुझे, टुडे व्हाट आई शुड डू दैट आई शुड नो टुडे। और वो पता चलता है हमको राइट नाउ, मुझे बीमारी कैसे हुई, मैंने वो उधर का जल पिया था, उधर घूमने गया था, उधर मैं गर्मी में था, उधर सर्दी में था, डायग्नोसिस किया। मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है, करना क्या है, अभी ट्रीटमेंट क्या करना है पहले बताओ। डायग्नोसिस बहुत किया, बहुत टेस्ट किया, सब कुछ मालूम पड़ा कौन सी जगह पर ब्रेन में कौन से कोने में ट्यूमर है। पेशेंट पूछता है दर्द हो रहा है मुझे, अभी ट्रीटमेंट करो पहला। तो हमारे संप्रदाय के अंदर वो सब सिद्धि विद्धि नहीं है, किसके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ रहे हैं, किसके मन में कौन से विचार आ रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं, हाथ लगाकर बीमारी ठीक कर सकते हैं, हाँ बूढ़े को जवान कर सकते हैं, ऐसे भी कोई कायाकल्प करते हैं। वो बड़ा इंप्रेसिव लगता है, अरे वाह क्या बात है, क्या शक्ति है उनके पास। एक महाराज जो जल के नीचे तपस्या करते हैं, भारी आते नहीं है। नथिंग ग्रेट सर, नथिंग ग्रेट, क्योंकि वो सब करके भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को। भगवान के चरणों की प्राप्ति नम्रता से होती है और सेवा भाव से होती है, और वो ब्रह्मा जी हमको इस संप्रदाय में सिखाते हैं। इस इज अ रेवोल्यूशनरी संप्रदाय, क्रांतिकारी संप्रदाय है, जिसमें हमको अपने आप के स्वत्व को छोड़कर केवल भगवान को अपने आप को अर्पण करना सिखाते हैं। यू हैव टू फॉरगेट योर सेल्फ एंड कीप कृष्णा इन योर प्लेस। जब जहाँ पर आप रहते हो अपने आप को रखते हो, वहाँ पर भगवान को रखने को सिखाते हैं। देन अवर लाइफ इज परफेक्ट। और जब ऐसा होता है तो स्वयं कृष्ण हमारे द्वार पर दौड़ के आते हैं हमको लेने के लिए। ये संप्रदाय ऐसा है कि इसमें भगवान को अपने पास कैसे लाना है वो सिखाते हैं, और बाकी संप्रदाय में क्या सिखाते हैं उनके पीछे दौड़ना कैसे है वो सिखाते हैं। बालक जो होता है ना, जन्म लेता है बालक, वो दौड़ता है माँ के पास कभी, जब 6 महीने का है 2 महीने का है, माता उसके पास आती है, पिता उसके पास आते हैं, सब लोग उसके पास आते हैं, वो कुछ नहीं करता, खाली रोता करके। सब भाग के आते हैं उसके पास, आते ना हम लोग के पास भी आते हैं, हम लोग भी जाते हैं हमारे बच्चे के पास। तो उसका टेक्निक क्या है, वो केवल ऐसा रोता है कि सब गैस वैस बंद करके, खाम बंद करके माँ बाप भाग के आते हैं, क्यों रो रहा है भाई तू। तो हमारे भक्ति का टेक्निक है ना वो ऐसा है कि ये भक्ति जो ब्रह्मा जी हमको सिखा रहे हैं इससे जो इच्छित है, जिसको प्राप्त करना है, वही हमारे पास दौड़ के आते हैं। ये रहस्य इस संप्रदाय में सिखाया है। बहुत सुंदर कल्पना है, बहुत सुंदर शास्त्र है, सुंदर मार्ग है। तो इसलिए जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग का जो महात्म्य है वो हमको पता होना जरूरी है। तब जाकर हम समझ सकते हैं कि हमारे संप्रदाय में क्या महानता है। ये नहीं कि हमको गर्व करना है, लेकिन जानकारी जरूर होनी चाहिए। गर्व अलग बात है, लेकिन स्वाभिमान रखना ये दूसरी बात है। टू नो द ग्लोरी ऑफ योर संप्रदाय इज नॉट प्राइड, जस्ट नॉलेज, टू बी अवेयर। और उसको कम नहीं समझना चाहिए, उसकी कीमत कम नहीं करनी चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि इसमें अच्छा है, हम लोग वहाँ आते तो कितना अच्छा होता, उनके संप्रदाय में तो दिन तीन बार मिठाई बनती है, भोग में हमको मिलती है, हमारे मंदिर में नहीं बनता है। उस संप्रदाय में वो प्रिंसिपल है, वो सब बाहर की बातें। एसेंस जो है वो भक्ति का है, वो प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर यमराज जी जो है यमदूतों को समझा रहे हैं, रहस्य की बात समझा रहे हैं। और ये रहस्य अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी, कोई कष्ट नहीं बचेगा, कोई तकलीफ नहीं बचेगी। क्योंकि आपका लक्ष्य आपके सामने क्लियर है, मार्ग आपके सामने क्लियर है, जो व्यक्ति आपको वो दिखाएगा वो क्लियर है, करना क्या वो भी क्लियर है। तो नो कन्फ्यूजन, यू विल अचीव द गोल, आपको वो लक्ष्य प्राप्त होगी। इसलिए हम आप सबको बधाई देते हैं, क्योंकि आप ऐसे आचार्य के संप्रदाय में हो जो स्वयं को पत्थर बना के बैठे हैं श्री जी के चरणों की रच रच पाने के लिए। रवि भी बैठे हैं, रवि से बंदर भी जाते हैं, कुत्ता भी जाता है, टट्टी पेशाब भी करता है, लेकिन वो वैसे ही बैठे हुए हैं क्योंकि जानते हैं कि मुझे गोपियों के चरणों की रच चाहिए, भगवान के चरणों की रच चाहिए। और भगवान भी उनका भाव देखकर उनको वो प्राप्ति करा दिए है। कृष्णा हैज मेड इट पॉसिबल फॉर हिम, सबको नहीं बनाया, उधर केवल तीन लोगों को बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश बस, और कोई वहां पर पत्थर नहीं बनाया। क्योंकि स्पिरिचुअली वो सबसे हाईएस्ट पोजिशन है कि नहीं? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने यही सिद्धांत जो है वैसे के वैसा जाकर वहां पर प्रचारित किया। कोई अपना मसाला नहीं मिक्स किया उसके अंदर, अपना सॉल्ट अपना स्पाइस मिक्स नहीं किया, वैसे के वैसे ही जाके दिया। लोगों ने उनको बताया था, अरे आप तो उनको बताओ थोड़ा मांस खा सकते हो, लेकिन आओ मेरे पास जब करो। वो लोग नहीं छोड़ने वाले मांस, आप थोड़ा सा डायल्यूट करो, अपना काम जो है थोड़ा सा ढीला करो। जिस संप्रदाय को लेकर आप जा रहे हैं वो वहाँ पर नहीं हो सकता है। हम लोग जाके कोशिश करके आए, हार कर वापस आ गए हैं। थोड़ा सा उनको आप भी थोड़ा शर्ट पैंट पहनना सीखो, थोड़ा कांटा और चम्मच से खाना सीखो, ऐसे बोलते थे उनको सन्यासी लोग जो लौट के आए थे वहाँ पर। लेकिन प्रभुपाद जी ने बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए वैसा का वैसा वहाँ बताया और लाखों को भक्त बनाए वहाँ पर जाके, क्योंकि उनको फेथ था इस मार्ग के रहस्य पर। इसलिए उन्होंने जाकर अनंत पत्थरों में से हीरे चुने और भगवान के चरणों में अर्पण किए। इसलिए संप्रदाय आज भी चल रहा है। हाँ, पूरे विश्व के अंदर मैं आपको यकीन साथ कह सकता हूँ इतना शुद्ध संप्रदाय और कोई नहीं आज की तारीख में, हिस्टोरिकली नहीं, आज की तारीख बता रहा हूँ। इतना प्योर, इतना सिंसियर, क्लियर प्रिंसिपल्स, क्लियर लक्ष्य, क्लियर मार्ग वाला, शिक्षा देने वाला संप्रदाय पूरे विश्व में कोई नहीं है। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति मार्ग का संप्रदाय सबसे बेस्ट संप्रदाय है। और आपको शायद सुन को लगेगा कि प्रभु जी को ज़्यादा ही बोल रहे हैं आज, लेकिन आगे जाकर केवल एक ही धर्म बचेगा, वो है इस्कॉन धर्म, हरि नाम का धर्म बस। बाकी सब आपको नजर आएगा, अगर आप जिएंगे बहुत साल तो देखेंगे आप सब टूटते हुए नजर आएंगे आपको, और केवल हरिनाम का धर्म बचेगा। और वो गौरांग महाप्रभु का धर्म जो है वो प्रभुपाद ने जाके उसकी नींव रोई पूरे विश्व के अंदर। और आज वो चले गए, उसके बाद भी कई साल गुजर गए हैं, 35-40 साल हो गए जाने के बाद भी इतना जोर से फैल रहा है वो आज, क्योंकि महाप्रभु का संप्रदाय है वो। पृथ्वी से आते सर्व नगराधि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो मर नाम, ये संप्रदाय इतनी कृपा है उसके अंदर, इसके ही द्वारा पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार होना है। और होते हुए देख रहे हैं हम लोग, इतने मंदिर बन रहे हैं भारत में अभी, लाखों के लोग संख्या में मंदिर में लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। किसी भी मौसम में आप जाइए इस्कॉन के मंदिर में, किसी भी मौसम में, ठंड के और गर्मी में, 500 लोग आपको मंगल आरती मिलेंगे। उसमें 150 भक्त रहेंगे, बाकी सब लोग दिल्ली आगरा से आते हैं। 4:30 इन द मॉर्निंग, कभी भी जाओ, भीड़ लगी रहती है, लोग नाचते रहते हैं उसके अंदर जाते, कीर्तन चलते रहता है, वो सब लोग ताली बजाकर नाचते रहते हैं। मैक्सिमम क्राउड वहाँ पर आता है। क्राउड तो बहुत जगह पर है, लेकिन वहाँ पर आने का मतलब क्या है, जहाँ पर शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल अवेलेबल है वहाँ पर आप पहुँच गए तो आपको वो मिलेगा वहाँ पर। ऐसे विश्व भर में प्रभुपाद जी ने सेंटर बना के रखे, जागृत किया भक्ति का, क्योंकि सिंसियर लोग हैं बहुत। यहाँ पर कोई पैसा बनाने के लिए आता नहीं है, क्योंकि क्या चाय कॉफ़ी नहीं मिलती यहाँ पर, लहसुन प्याज नहीं मिलता है, कौन आएगा इधर? वही आएगा जो समझता है इसकी कीमत क्या है। और बाकी जो चाय मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, ये भी चलता है, वो भी चलता है, और उनका क्वालिटी आप देख सकते हो। इसलिए इसका उनके भक्त को देखते तो बड़ा आनंद लगता है हृदय में, यू फील अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट। एयरपोर्ट में कहीं भक्त दिखाई दे तो कितनी खुशी होती है देख के, क्योंकि चेहरे पर शुद्धि शुद्धि की रौनक होती है, पवित्रता की रौनक होती है, क्योंकि वो अपने आचार से और विचार से शुद्ध है और पवित्रतम भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है। सबसे भाग्यवान जीव, ऐसे जीव निर्माण कर रहे हैं प्रभुपाद जी का संप्रदाय। इसलिए हमको कभी भी खफा नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या किया और कहाँ पे आ गया। अगर आप समझते हो कि आप कहाँ बैठे हो और क्या उपलब्ध है, तो हमेशा आप खुश रहेंगे। एवरी टाइम विल बी हैप्पी एंड ब्लिसफुल कि आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट संप्रदाय, है ना। आई एम पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप विनर टीम है वो, वैसे वी आर द मेंबर ऑफ दैट टीम विच इज गोइंग बैक टू गॉड हेड वेरी सून बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। और लास्ट में बताना चाहता हूँ आपको मैं, श्रील प्रभुपाद जी ने गोलोक वृंदावन में एक बैक डोर एंट्री खोल दिया है स्पेशली फॉर इस्कॉन डिवोटीज, दोज हु आर सिंसियर। इफ यू हैव फेथ यू लिसन, डोंट हैव फेथ इट्स अप टू यू, इट्स अ गारंटीड थिंग। प्रभुपाद जी इज अ वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी एंड ही हैज ओपन्ड अ स्पेशल गेट फॉर यू। ओनली यू हैव टू डू वन थिंग, चैंट हरे कृष्णा ऑफेंसलेसली, सर्व द डिवोटीज एंड डोंट ऑफेंड डिवोटीज, इतना ही करना बस। भक्तों का अपराध नहीं करना और शुद्ध नाम का जप करना और भक्तों की सेवा करना। हाउ टू प्लीज डिवोटीज, इतना देखना खाली बस। इतना आप करोगे ना, योर एंट्री इन गोलोक वृंदावन इज गारंटीड बाय द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। चलो प्रभुपाद की, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु जी, लो पानी। मुझे ना वो एग्जैक्टली याद नहीं आता है हमेशा, थोड़ा उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि राधा रानी का तत्व जो है भक्ति का, वो निम्बार्क संप्रदाय से लिया, मुझे बिल्कुल याद है ठीक से। निम्बार्क संप्रदाय से राधा रानी का जो सेवा है वो लिया गया। ऐसे अलग अलग संप्रदाय से इम्पोर्टेंट बात जो है, उनका जो एसेंस है वो उन्होंने लिया। बताऊँगा आपको, मेरे किताब में है वो। और बताइए। क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। व्हाट इज इट? हाँ, देखो ऐसा है, एक होता है देश काल पात्र, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। प्रभुपाद जी ने उस समय के लिए जो आवश्यकता वो किया, आज का समय अलग है, इसके लिए वो जो करना है आपको, अगर जाना है समझो बहरीन में, प्रभुपाद जी बहरीन नहीं गए थे, प्रभुपाद जी रशिया में भी अंदर नहीं गए, भले ही अंदर ही उधर ही थे एक जगह पर। आज भी भक्त लोगों को रशिया में एंट्री करना होता तो वहाँ पर पैंट शर्ट पहन के एंट्री करके अंदर जाकर धोती कुर्ता पहनते हैं। बहरीन में भी आप जाएंगे, दुबई में जाएंगे, तो एयरपोर्ट से आप धोती कुर्ता पहन के अंदर नहीं जा सकते। पैंट शर्ट पहन के जाते हैं, कैप लगा के जाते हैं, और फिर पहुँचते ही धोती कुर्ता में बदली कर देते हैं। तो अगर वो बोलेंगे नहीं हम धोती कुर्ता में जाएंगे तो वो बहरीन में प्रचार नहीं कर सकते। तो समय को देखते हुए जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप बोलेंगे मोबाइल का इस्तेमाल कर मत करो, प्रभुपाद जी ने किया था। आज का समाज ज़माना जो है, आज के ज़माने में सब लोग इंटरनेट को पढ़ते हैं, इसलिए आज सब लोग प्रचार इंटरनेट से करते हैं, है ना। वेबसाइट खोल के रखा है, वहाँ पर सब बना के रखा है। अगर आज प्रभुपाद जी होते तो बोलते थे वेबसाइट खोलो और वहाँ पर अपना डालो प्रचार जो भी करना है। समय बदलता है ना प्रभु जी, समय के अनुसार फिर होता है। उस समय वो योग्य था इसलिए प्रभुपाद जी ने किया, लेकिन उस समय पर पहले कुछ काम होते नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल औरतों को दीक्षा नहीं देते थे उसके पहले, तो प्रभुपाद ने अलग दीक्षा दिया ना औरतों को, ब्राह्मण दीक्षा भी उसके बाद में दिया सेपरेटली। उसके पहले तो केवल पति की दीक्षा होती थी और पत्नी का गुरु वही होता था, उसको ऑटोमेटिक बेनिफिट मिलता था। लेकिन प्रभुपाद ने देखा समय के अनुसार कि यहाँ पर तो औरतें सेपरेट है, मैन सेपरेट है, यहाँ पर कोई परिवार है ही नहीं यहाँ पर, तो तो लेडीज लोगों को दीक्षा देना शुरू कर दिया उन्होंने, वो टिका हुआ उनके ऊपर। फॉरेनर लोगों को संन्यास दिया, यहाँ पर कल्चर था कि केवल ब्राह्मण वंश के लोगों को संन्यास मिलता था ट्रेडिशनली, प्रभुपाद ने बदली कर दिया। समय को देखते हुए उन्होंने चेंज कर दिया उसको। तो उस समय में जो उन्होंने किया वो आज हम फॉलो करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आज जो करना है उन्होंने क्या दिखाया, अल्टीमेटली प्रचार के लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। इसलिए सन्यासी लोग कभी भी पैदल के अलावा यात्रा नहीं करते थे, वो हवाई जहाज से यात्रा करने लगे ना बाद में। बोलते अगर मैं, उन्होंने लोगों ने उनको पूछा कि आप सन्यासी हो तो फ्लाइट में क्यों जाते हो, तो बताया उन्होंने क्या जवाब दिया उन्होंने बोला कि जेट स्पीड से लोग नरक की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जेट में बैठकर उनको प्रचार करके रोकना चाहता हूँ। आई एम ऑल्सो ट्रैवलिंग बाय जेट बिकॉज बाय जेट स्पीड दे आर गोइंग टू हेल, सो आई वॉन्ट टू सेव देम। इफ आई गो इन बुलक कार्ट दे विल रीच हेल फास्टर देन मी, सो आई हैव टू गो एंड सेव देम एंड टू ब्रिंग देम बैक टू कृष्णा लोटस फीट। तो उन्होंने भी बदली किया ना उस समय पे, उसके पहले सन्यासी लोग करते नहीं थे ऐसा, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए आज वो हो रहा है जो उन्होंने नहीं किया था वो आज हो रहा है। रशिया में प्रचार हो रहा है तो भी होता था क्या पहले, नहीं होता था। चाइना में हो रहा है प्रभुपाद जी के, वो तो चाइना में क्या होता था, बाद में हुआ सब कुछ। तो अभी आप नए नए देश में जा रहे हो जहाँ पर पहले गए नहीं थे, तो वहाँ का नियम देखना पड़ेगा आपको कैसा प्रचार करना है। एक दिन सऊदी अरेबिया भी खुल जाएगा तो आपको फिर वहाँ देखना पड़ेगा कैसे करना है। बहरीन में भी गुरुदेव गए थे तो सब सऊदी बहरीन के लोग बुरखा पहन के उधर कथा में बैठे थे महाराज के। तो परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमको भी उसको देखते हुए चलना है। एक ही पकड़ के बैठना नहीं, क्या ऐसा ही करना चाहिए। उस समय प्रभुपाद जी को श्रद्धा थी कि ये चलेगा, इसलिए उन्होंने चलाया उसको। आज वो होते तो आपको कुछ अलग बोलते कि ऐसा ऐसा अभी इंटरनेट चल रहा है पूरा, मोबाइल ये वो टैबलेट और कंप्यूटर चल रहा है, तो उसके अनुसार प्रचार करो, जो जो इफेक्टिव है वैसे करो। समझना क्या है, एसेंस बाहरी वस्तु में बदलती रहती है लेकिन सार नहीं बदलना चाहिए, सार को बनाए रखना चाहिए। एसेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, बाहरी रूप जो है वो बदली हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने चर्च के अंदर मंदिर बनाए तो बहुत सारे चर्च खाली पड़े हुए थे, बिकाऊ थे। तो नया मंदिर बनाओ, जगह लेके टाइम पास करो, उसके बदले में चर्च ही ले लिया, उसके अंदर मंदिर बना दिया। और आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं, गौड़ी संप्रदाय का आदमी, गौड़ी संप्रदाय का आचार्य है और चर्च के अंदर मंदिर कैसे बना सकता है देश का अलपात्र। हम लोग जब भी वो सुनामी आया था ना, तो हम लोग उसके लिए गए थे प्रचार करने के लिए, उसमें सेवा करने के लिए गए थे, मेडिकल हरिनाम खिचड़ी वितरण और हरिनाम संकीर्तन और मेडिकल सब करने गए थे। तो एक मस्जिद के अंदर हमने अपना डेरा जमा लिया था, गवर्नमेंट ने बोला था ये मस्जिद खाली, इधर आप अपना कैंप लगा दो। तो मस्जिद के अंदर जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं भगवान को पूछते हैं, वहाँ पर हम लोग मेडिकल कैंप लगाया, खिचड़ी वितरण हरिनाम संकीर्तन पुस्तक वितरण सब वहाँ पर किया। देश का अलपात्र, उस समय आपत स्थिति थी, आपत समय था, उस समय जो मिल रही जगह ले लो प्रचार करो। हरिनाम गुंज रहा था मस्जिद के अंदर। दिस इज हाउ इट इज एज पर टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांस। और प्रभुपाद जी बड़े निपुण थे उसके अंदर। उनके आचार्य भी प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, किसी सन्यासी ने कोई गाड़ी में बैठा नहीं था, वो कोई सन्यासी उस समय फोर व्हीलर में बैठता नहीं था, चल के यात्रा करते थे। उस समय भक्ति सिद्धांत महाराज ने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदा था। रोल्स रॉयस में क्या होता है, आज के तारीख में रोल्स रॉयस की 4.5 करोड़ रुपये कीमत है, नया मॉडल अभी आया है मार्केट में, 4.5 करोड़ की गाड़ी है। हमारे 4 परिवार तो VRS ले लेंगे, रिटायर हो जाएंगे, रिटायर उतने पैसे मतलब काम ही बंदा बंद करेंगे, 1-1 करोड़ बांट लो, घर में बैठ के आराम करो। 4.5 की गाड़ी है वो, करोड़ की। वैसी गाड़ी उस समय केवल भारत के वायसराय के पास थी, गवर्नर के पास भारत के, और दूसरी गाड़ी हमारे परम गुरु महाराज के पास थी। लोगों ने बहुत टीका किया उनके ऊपर, क्या है सन्यासी कैसे हो तुम, रोल्स रॉयस गाड़ी में घूमते हो। उनको क्या मालूम था, उन्होंने क्या देखा, रोल्स रॉयस का लोगों को बहुत आकर्षण है, लोग देखने को आते, तो वो घूमते थे धीरे धीरे और इधर रुकते थे, तो गाड़ी देखने के लोग आते थे, तो वो लोग जमा हो गए, फिर प्रवचन करते थे। समझ में आया ना आपको, लोगों को इकट्ठा करने का उन्होंने साधन बना लिया उसको। तो है रोल्स का गाड़ी, आप देखेंगे कितना भोगी बाबा है, हाँ देखो रोल्स रॉयस भी घूमता है, लेकिन कर क्या रहा है वो उधर बैठ के, आप घर में झोपड़ी में रह के भी भोग ले रहे हो, वो रोल्स रॉयस में बैठ के सेवा कर रहा है कि नहीं। कितना अनोखा तरीका है, ये केवल आचार्य के मन में आ सकता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसी के मन में ऐसे आइडिया आ सकती है ना। तो वैसे उन पर बहुत टिका हुई उस समय, गाड़ी लिया इसलिए, लेकिन उन्होंने कुछ चिंता नहीं किया उसका। अरे उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने अलालनाथ में मंदिर बांधने के लिए, जल्दी जल्दी करने के लिए अपने हाथ से बीड़ी बनाई कर्मचारियों के लिए, क्योंकि वो बीड़ी के बिना उनकी गाड़ी चलती नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने बीड़ी पीने का प्रचार किया कि भाई पियो, ये लो और पियो और बाकी लोगों को पिलाओ, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने जो सेवा के लिए अनुकूल था समय को देखते हुए उसको स्वीकार किया। लाइफ लॉन्ग बीड़ी बनाई नहीं उन्होंने अपने हाथ में शिष्यों को बांटने के लिए, ये समझना जरूरी है। एसेंस क्या है आचार्य के व्यवहार में, एसेंस क्या है वो समझना चाहिए, और वो एसेंस आपको समझ में आया तो आप भी कुछ गलत काम आगे कर सकते हो, जो लगेगा लोगों को गलत है लेकिन गलत नहीं होगा वो। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किसी लड़की को दीक्षा नहीं दिया था, प्रभुपाद ने दिया, आप बोल सकते हो प्रभुपाद ने उनका आदेश भंग किया, उनका नियम तोड़ दिया, उनका संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं ना, लेकिन नहीं ऐसा किया उन्होंने। एसेंस क्या है उसका, समय के अनुसार देखते हुए जीव को क्या प्रेरणा मिल सकती है भगवान की भक्ति में आने के लिए, वो उन्होंने किया। क्या सिद्धांत रूप गोस्वामी का, अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। आज के समय पे अनुकूल क्या है उसको अपना लो, प्रतिकूल क्या है उसको त्याग दो। वो आज का जो प्रतिकूल है कल का अनुकूल हो सकता है, आज वो प्रतिकूल हो जाएगा तो त्याग दो उसको। अपना तो कृष्ण की प्राप्ति करनी है अपने को, ये समझना जरूरी है। प्रभुपाद जी ने आश्रम में महिला आश्रम बनाया, ब्रह्मचारिणी आश्रम कभी हुआ था क्या उसके पहले? मैंने देखा कि ऑलरेडी अलग ले रहे हैं वो, कैसे भक्ति में आएंगे अगर मैं बोलूँगा इधर एंट्री नहीं है आपको। तो कितनी माताएं ज्वाइन हो गई फुल टाइम उसमें से, अभी कितनी महान माताएं अभी उसमें अंदर है ना, दीन तारिणी माता जी, यमुना माता जी, कितने माता जी लोग उसमें से तैयार हो गए। तो आचार्य क्या करता है, आचार्य समय को देखते हुए भक्ति का प्रचार करने के लिए अनोखे अनोखे तरीके अपनाता है, ऐसा है। समझ में आया आपको, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा।
जनक महाराज है, जनक महाराज जो महाजन है, इसके बारे में तो हम लोग ज्यादा,
क्योंकि कलयुग में इन 12 में से केवल 4 अवेलेबल है, वो सब बाकी के युगों में अवेलेबल थे, लेकिन बाकी सब अभी काल के समय से नष्ट हो गए हैं संप्रदाय। और कलयुग में 4 संप्रदाय प्रधान अवस्था में, शास्त्र में लिखा है कि ये रहेंगे 4 संप्रदाय, इसमें से बाकी लोग भी हट हट जाएंगे, एक ही गौड़ीय संप्रदाय बचेगा समय के अनुसार। तो इसलिए वो जनक महाराज आचार्य हैं, महाजन हैं, लेकिन उनका संप्रदाय अभी अवेलेबल नहीं है। 4 अवेलेबल हैं, ब्रह्मा, शिवा, श्री और कुमार। अपना भाग्य क्या है, अपना संप्रदाय है ना बस। ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय की, ब्रह्मा जी देव की, गौरांग महाप्रभु की, लीला प्रभुपाद की जय। श्री राधे श्याम।